प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर
अपनी संतान के विषय में अपने माता पिता ही चिंतित होते हैं, अन्य मित्र, कोई रिलेटिव, रिश्तेदार दुखी अवश्य होता है, लेकिन जितना माता पिता को कष्ट होता है इतना अन्य को नहीं होता, ये यथार्थ बात है। तो हम कबीर परमेश्वर जी के बच्चे हैं और कबीर परमेश्वर ही हमारे सभी संकटों का निवारण कर सकते हैं, उन्हीं को हमारे ऊपर रहम आता है, दया आती है। वो परमेश्वर आकर के हमें ज्ञान देते हैं, समझाते हैं कि तुम काल के जाल में फंसे पड़े हो, यहां तुम्हें इस माया का नशा करा के अज्ञान रूप अंधेरे में भरमाया हुआ है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम काल के जाल में फंसे पड़े हो, यहां कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई पुत्री नहीं, कोई माता पिता नहीं, कोई संबंधी नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जैसे अपने रिश्तेदारों को अपना मानते हैं, अपनी बेटी को अपना मानते हैं, पुत्र को अपना मानते हैं, संतान को अपना मानते हैं, ये अपनी नहीं है। आज मृत्यु हो जाती है तो न संतान साथ चलेगी, न संपत्ति साथ चलेगी, तो अपनी कहां हुई। यहां केवल स्वार्थ संबंधी एक दूसरे के साथ जुगाड़ जुड़ रहे हैं। एक दूसरे से हम केवल स्वार्थ से संबंधित हैं। अब परमात्मा ने कहा है कि मतलब के बिना कोई नहीं अपना। भाई मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, उसके विषय में क्या बताते हैं, बहुत ही साधारण सा उदाहरण दिया इस वाणी में। भाई जब तक बैल चले हड़िये में तब तक डाले चारा, जब तक बैल चले हड़िये में तब तक डाले चारा, बूढ़ा वृद्ध हुआ जब नाथ काट दी वो दर दर ठोकर खारा, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। हमने इसका खूब बिटर एक्सपीरियंस है क्योंकि इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ। हम देखा करते थे बैल से सारा, उसके 8-7 वर्ष का जीवन जो उस बैल का होता था उससे काम लेते, उसके बाद या तो किसी को दे देते वो, जैसे ये ले जाते हैं काटने वाले, चाम उतारने वाले, या कोई ज्यादा धार्मिकता दिखाता कि मैं उनको नहीं दूंगा, वो उसकी नाथ काट कर और गले से रस्सा काट कर लठ मार देता, वो इधर उधर कमजोर इतना होता चला नहीं जाता और इधर उधर धक्के खाता। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं भाई बूढ़ा होवे पड़े खाट में सुने बचन खारे, कुत्ते तावण का भी सुख को नय छाती फूकन हारे, मतलब के बिना कोए नहीं प्यारा। पुण्यात्मा, हमने इस काल के जाल को समझना है, अपने को दुख अपने का को ही दुख होता है। एक लड़की की शादी की, ब्याह करा, विवाह के एक वर्ष बाद वो बेटी का पति दुर्घटनाग्रस्त होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गया। बड़ा दुख हुआ परिवार को। 13 दिन के बाद उसके छोटे भाई के साथ उस लड़की का संबंध कर दिया। अब लड़की की माता पहले तो बहुत बुरी तरह रो रही थी, और जिस दिन उस छोटे भाई के साथ उसका संबंध जोड़ दिया, खुशी मना रही थी, कोई दुख नहीं था, लेकिन लड़के की मां फिर भी टक्कर मार मार कर रो रही थी। पुण्यात्माओं, इस काल ने हमें ऐसा बांध रखा है, इसने अपने स्वार्थवश हमें यहां पर पाल रखा है। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का यो नित आहार करता है, और उसी के लिए हमें एक दूसरे के साथ झूठे मोह ममता में और ये झूठा सुख दे करके फंसा रखे हैं। तो कबीर परमेश्वर को, जो हमारे पिता हैं, उनको हमारा तरस आता है, हमारे ऊपर रहम आता है, अपनी संतान के लिए वो भटकते फिरते हैं। परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठो पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। जो बच्छा गौ की नजर में न्यू साई को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। हमारे सभी संकटों का निवारण कबीर परमेश्वर ही कर सकता है, वो सुप्रीम पावर है। एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश के अपने उत्तर प्रदेश राज्य में स्टेट में एक मगहर स्थान है, मगहर नगर है। मगहर नगर जो है, जो गोरखपुर शहर है, गोरखपुर गीता प्रेस गोरखपुर के नाम से जो प्रसिद्ध है, उस गोरखपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। उस मगहर, वो उस समय मगहर रियासत थी, उस रियासत का नवाब बिजली खान पठान था। बिजली खान पठान था और वहां पर मुसलमान और हिंदू उस नगर के अंदर लगभग बराबर की मात्रा में रहते थे। वहां पर एक दुर्भिक्ष गिरा, दुर्भिक्ष अकाल पड़ गया। सभी ने अपने जंतर मंतर कर लिए, हिंदुओं ने भी अपने यज्ञ आदि कर ली, धर्म भी कर लिया, लेकिन कोई बूंद नहीं गिरी, वर्षा नहीं हुई। त्राही त्राही मच गई, बहुत बुरा हाल हो गया। किसी व्यक्ति ने वहां के नागरिकों को बताया कि काशी के अंदर एक बहुत बड़े महान संत रहते हैं, बहुत ही सिद्धि युक्त है, यदि वो प्रसन्न हो जाए और वो आकर के आपके ऊपर रहम करें तो वर्षा हो सकती है। उनका नाम कबीर है, कबीर नाम है उन महापुरुष का। यदि वो आ जाएं और उनसे आप जाकर प्रार्थना करो तो आपका संकट निवारण हो सकता है। इस बात का ज्ञान बिजली खां पठान नवाब को हुआ, क्योंकि उस समय तो सब गिगी गिवन जाती है। पुनात्मो, जब तक परमात्मा राजी है, समय पर वर्षा हो रही है और टाइम पर टूक मिल रहे, हमारे को भोजन मिल रहा है, तब तक तो हम आंडी पाका है, दारू पीवे गुटी लावा, कदे न्यो के नमक ठीक को ना सब्जी में ला के शराब की घूंट। अब जैसे शराबी शराब पीता है और शराब पी के आता है, अब उसकी पत्नी के पहले जाडा चढ़ ले तो वो शाम न घर न आवे, पता लग जाता है कि वो आते कुकर्म करेगा, को बर्तन फोड़ेगा, के मेरी दे ही तोड़ेगा, तो बेचारी अपनी तरफ से सारे काम सेट रखती है और बढ़िया भोजन बनाती है और उसमें किसी दिन थोड़ा बहुत नमक कम ज्यादा हो जा तो थाली फेंक कर मारे और मैं नहीं खाता रोटी, मुंह च डाले, वह बेचारी उसका पीछे पीछे फिरे। कहने का भाव यह है कि हमने बकवाद इतने बावे हैं जब तक हमें समय पर रोटी मिल रही है और भगवान रुस गया और वर्षा होनी बंद होगी। जिस साइंस पर आज ये आध्यात्मिक ज्ञानहीन व्यक्ति गर्व करते हैं कि कहां है भगवान, आज साइंस ने ये खोज कर ली, आज साइंस ने ये खोज कर ली, साइंस ने के खोज कर ली भगवान के दिए हुए पदार्थों पर, इन्होंने अपनी तगड़मबाजी, वो भी परमात्मा की ही दया से बुद्धि इनको दी गई है, जो इस कलयुग में देना मालिक ने था वही बनवाया है। इस युग को कलयुग इसलिए कहा गया है कि इसमें मशीन, मोटर मशीन से ही कार्य हुआ करेंगे। ये पहले से ही ऋषियों के द्वारा नॉमिनेटेड था ये युग कि इसमें मशीन की जो है ना उत्थान होगा, मशीन का, मशीनरी का, और वो परमात्मा ही करवाता है। और हम इसको थोड़े से आकाश में जहाज के द्वारा उड़ जाने मात्र को ये मान लेते हैं कि भगवान नहीं है, ये हमारी महामूर्खता है। यदि 2 वर्ष या 3 वर्ष अब वर्षा ना हो, परमात्मा रुष्ट हो जावे, ये हवाई जहाज जिनके ऊपर बैठ कर ये अपला तू नांडी पाके और धरती तोलते हैं, कुछ नहीं समझ रहे, किसी को भगवान को नहीं मानते, ये हवाई जहाज और ये कंप्यूटर वहीं खड़े खड़े पड़े पड़े इनको जंग लगे, इनमें कोई बैठनिया नहीं पावे, क्योंकि रोटी मिले नहीं, हाहाकार मच जा, टक्कर मार मार के मरते। तो पुण्यात्मा भगवान से दूर होना हमारी सबसे बड़ी मूर्खता और अध्यात्म ज्ञानहीनता है। एक समय एक बहुत भयंकर अकाल गिर गया और जिसके कारण मानव समाज भूख के कारण मृत्यु को प्राप्त होने लगा। कहते हैं सन 1720 में एक बहुत ही भयंकर अकाल गिरा और उसमें क्या स्थिति हुई इसके विषय में संत गरीबदास जी महाराज ने उसका अच्छा चित्रण किया, आपको पढ़ के सुनाते हैं। गरीब बिसे में बिसरे नहीं लागी जोर कशीस, खंड बिहिंडा हो गए देखो कौम सतीश। अब उसमें ये छुआछात बहुत ज्यादा थी, जात पात का बहुत भिन्नता थी और जब वो अकाल पड़ा किसी ने किसी के घर में रोटी पागी बाज के खा ली, चाहे ब्राह्मण ने चमार के घर पर पागी वहीं बाज के रोटी खोज के खा ली। जब भूल गए हम ब्राह्मण हैं, कम अक्षत्री हैं, कम शूद्र हैं, या तो बकवाद इतने चला जब तक हमें सारी सुविधा भगवान प्रदान कर रहा है। विषय में बिसरे नहीं लागी जोर कशीस, खंड बिहंडा हो गए देखो कौम छतीस। सहजादे मांगत फेरे वो दिल्ली के उमराव, जिन रोटी पाई नहीं जो खाते नान पुलाव। कहते दिल्ली के वो बादशाह और उनके पुत्र जो नान पुलाव खाया करते थे उन रोटी नहीं मिली। सहजादे मांगत फेरे दिल्ली के उमराव, एक रोटी पाई नहीं जो खाते नान पुलाव। गंगा जमुना पार कूचली दुनी सब डोल, रोटी साटे बिक गए हे बालक लड़के मोले। नगर रोटियां के लिए अपने बेटे बालक भी बेच दिए लोगों ने। इस ते आगे क्या कहूं बीती बहुत बिताड़, बासमती भोजन कर रहे जिन पाया नहीं पवाड़े। एक पवाड़ घास होता है जिसको गधे भी नहीं खाते, और वो मनुष्यों ने खाया उसने। इस ते आगे क्या कहूं बीती बहुत बिताड़, बासमती भोजन कर रहे जिन पाया नहीं पवाड़। जो बासमती चावल खाया करते थे उनने वो पवाड़ घास भी ना खाने को मिला, सूख गया सब कुछ। खर पवाड़ नहीं खाते हैं मनुष्यों खाया तोड़ी, खर माने गधा। कहते गधा भी पवाड़ घास को नहीं खाता और मनुष्य ने तोड़ तोड़ के खा लिया। खर पवाड़ नहीं खाते हैं मनुष्यों खाया तोड़, सांगर टीट और बांखड़ी लीने वृक्ष झरोड़े। बांखड़ी एक कांटेदार एक बेल सी होती है फैली हुई जमीन पर खेतों में, और उसके इतने मोटे मोटे छोटे छोटे कांटे होते हैं। कहते वो बांखड़ी भी कूट कूट के खाई और वृक्षों के पत्ते ने तोड़ तोड़ के जरोड़ के, जरोड़ना में ना ऐसे खींच के पत्ते पत्ते निकाल लेना, उसको जरोड़ना बोलते हैं, जरोड़ लिए। खर पवाड़ नहीं खाते हैं मनुष्यों खाया तोड़े, सांगर टीट और बांखड़ी लीने वृक्ष जरोड़े। सांगर ये जाटी जंडिया का लग गया, जंडिया का फल वो सिंगर बोले सांगर, और टीट ये टींड लग गया कैरों के, और बांखड़ी लीने वृक्ष जरोड़े। ओहो खर पवाड़ नहीं खाते हैं मनुष्यों खाया तोड़े, सांगर टीट और बांखड़ी ही लीने वृक्ष जरोड़े। कड़ा कोंदरा खा गए जड़ा जो जरू झाड़, इस ते आगे क्या कहूं रही न बोधी बाड़े। बोधी बाड़ होती थी कांटेदार झाड़ियों की, अपने खेतों के चारों तरफ रक्षा करने के लिए बाड़ लगाते थे। कहते वह भी कूट कूट कर इंसानों ने खा ली। कड़ा कोंदरा खा गए जड़ा जो जरू झाड़, इस ते आगे क्या कहूं रही न बोधी बाड़। फजल किया यूं दुख सुनिया बरसे दीन दयाल, आए इंद्र गर्ज करे सुभर तालम ताल। सुभर सरवर ताल सातों धातुर सात अन वरसाही कै माही, मेर मौज मौला करी ही बादल पछाहे जाही। बरसे इंद्र घन गोर कर उतरा हुक्म हजूर, खलक मुलक सब आवादाने ना कहीं होत कसूर। ये भी से की बाता है लग्या इकीसा एन, साढ़ महीना शुभ घड़ी ही सातों अठों चैन। कहते हैं ये तो 1720 में आपको बताई कि बहुत बुरा हाल हो गया था, फिर 1721 में साढ़ महीना शुभ घड़ी और सातों आठों का दिन था, रात सातम और आठ की आठम की रात साढ़ की कहते हैं फिर परमेश्वर कबीर जी का आदेश आया और फिर इंद्र ने यहां वर्षा की। बरसे इंद्र घन घोरे कर उतरिया हुक्म हजूर, हजूर माने पूरे परमात्मा का आदेश आया इसके पास। खलक मुलक सब आवादान ना कहीं होत कसूर, ये बीसे की बात है लग्या इक्कीसा ऐन, साढ़ महीना शुभ घड़ी सातों अठों चैन, तीन चार और पांच माने हुआ अन उजाल, भिग्या गला सुदस्मणा यो खावे कंगाल, लांडी बुची लाड करे संतों के प्रताप, सांगर टीट न पावे ते इब खावे मूंग और बात। कहते हैं फिर सुख का सांस आ गया, जब सांगर टीट भी ना मिलने थे, टीट खाए नहीं जा सकते, आप खा के देखियो, क्योंकि उनको तो नमक आदि डाल डूल के कुछ दिन पानी में भिगो कर उसका कड़ुआपन कम करके, जबकि अचार रूप में थोड़ा सा खाया जाता है, और उस समय भूखे मर्त्याने ने सूख के खा लिए कति, हे भगवान जान बचाए किसी तरह। परमात्मा कहते हैं सहजादे मांगत फिरे वो दिल्ली के उमराव, और जिन एक रोटी पाई नहीं जो खाते नान पलाव, जो नान पलाव खाया करते थे अपने घर बनवा के नो माल पूड़े, उन्हें एक रोटी भी ना मिली, धक्के खाते अड्डे। तो पुण्यात्मा परमात्मा परम शक्ति है, उससे दूर होकर हम कष्ट ही कष्ट भोगते हैं। अब उसमें क्या दिक्कत आई, उस अकाल के दौरान सासू साली माए क्या बाप पूत बिछो, सकल कबीला तज गए ऐसा व्याप्या द्रोह। अब तो हम एक दूसरे के ना तीर ब्रेट अंडी पाके बैठे हैं। कहते उसमें सभी नाते रिश्ते भूल गए, माँ बाप भी कहीं, बाप कहीं भाग रहा रोटी के लिए, पिता बेटे किधर भाग गए, कोई टूक की तरह कुछ मिल जाए खान पीन को, माँ कहीं, पुण्यात्मा इसे गंदे लोक मामरा रहे हैं, यहां पर ना जाने कितनी आपत्तियां एक सेकंड में आ जाए, और हम उस लोक को छोड़ाए जहां आपत्ति नाम की चीज नहीं। अब जब तक हम वहां नहीं जालेंगे इतने यहां सुख हो नहीं सकता। ऐसी बीती जगत में जाने नहीं जहान, कथर चूना लाए कब चाबण लगे पान। अब उस समय तो ऐसी दुर्गति हुई थी, अब भूल गई है दुनिया, और कहते उस समय इब यो चूना कत्था लाके पान खान लगे, बकवाद करें बता पान ते के पेट भर कोरी बकवाद। अब उस समय कहां गई थी वो पान, जब टक्कर मारते फिरे थे एक आहार के लिए। तो पुण्यात्मा इसलिए हमने विकार नहीं करने चाहिए, परमात्मा से डर के यहां से पीछा छुटवाना चाहिए, ताकि ये आपत्तियों के घर में फिर ना आ जावा। ऐसी बीती जगत में जाने नहीं जिहान, अब कथो चुना ला कह चाबण लगे पान, पांडो भारत में बचे यो रखे जनदास, काल कुचालों में रहे नहीं खाए खड़गाश। अपने आत्मा इसके साथ साथ एक निर्णय और दिया है परमेश्वर के प्यारी आत्मा गरीब दास जी ने, परमेश्वर से प्राप्त उस तत्व ज्ञान के आधार से, कबीर परमेश्वर से प्राप्त तत्व ज्ञान के आधार से, कि जो परमेश्वर की प्यारी आत्माएं थी अर्थात पिछले पुनः जन्म कभी किसी जन्म के परमात्मा कबीर जी के साथ थे, उनके ऊपर परमात्मा ने विशेष कृपा की ऐसी आपत्ति में, उन्होंने ये खड़ घास नहीं खाए, उनकी व्यवस्था परमात्मा ने की। अब जैसे महाभारत कितना भयंकर युद्ध हुआ, उसमें पांडवों की रक्षा बनी और सब दुनिया मर गई, ऐसे ही परमात्मा ऐसी आपत्तियों में कबीर परमेश्वर के बच्चों को, कबीर परमेश्वर की जो विशेष आत्माओं को, विशेष कौन सी होती हैं, जैसे वैसे तो हम कबीर जी के सभी बच्चे हैं, सभी उसकी आत्मा है, कीड़ी हाथी कुंदर राजा रंक महादेव ब्रह्मा विष्णु महेश और हम, विशेष आत्मा वो है जो उनकी आज्ञा का पालन करके उनके अनुसार चल रहे हैं। जैसे एक पिता के 5-6 बेटे हैं और 2 पुत्र उसकी आज्ञा का पालन ना करके बकवाद करते हैं, कितने चोरी करते हैं, कितने लठ बजाते हैं, कोई झगड़ा करते हैं, तो वो विशेष आत्मा उसके बच्चे नहीं है। आत्मा में दुख तो होता है लेकिन वो उसकी आज्ञा से बाहर जा करके है, तो उन पर विशेष ध्यान ना देकर के पिता उनकी तरफ विशेष ध्यान देता है जो उसकी मर्यादा में चल रही और जो दूसरे हैं मर्यादाहीन रहते हैं उनसे तो पैसे भी छुपा कर रखा कर रास्ते ये निकाल ना ले जाए। तो ऐसे ही जो परमेश्वर की प्यारी आत्माएं कभी किसी उसके चरणों में रही हैं, उस अक्षेत्र में परमात्मा ने अकाल नहीं गिरने दिया। तो यहां उसी के विषय में बताते हैं, पंडो भारत में बसे जैसे पांडो भारत में बचे यो राखे जनदास, काल कुचालो में रहे नहीं खाए खड़गाश। अपने आत्माओं हम भूल जाते हैं, परमात्मा को थोड़ा सा सुख होते हैं, इसलिए परमेश्वर कहते हैं इस झूठे सुख को सुख कह ये मान रहा मनमोद। अकाल गिरने से पहले धरती तोलने थे और फिर कैसी दुर्गति होगी, टक्कर मारते मरे, ना कोई भाई साथ रहा, ना कोई रिश्तेदार साथ रहा, ना कोई संबंधी टोया पाया। इसलिए परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोत है। जिसमें मगहर के अक्षेत्र में अकाल गिरा, तराई तराई मचगी, राजा के पांव के तले की जमीन भी खिसक गई, का बुरा हाल होगा। सभी जंतर मंतर, सभी देवी देवताओं को हिंदुओं ने मना लिया और सभी क्रियाएं कर ली मुसलमानों ने, लेकिन वर्षा नहीं हुई। जब बिजली खां पठान को पता चला कि बनारस में कबीर नामक महापुरुष परम संत रहते हैं, यदि वह मेहर कर दे तो वर्षा हो सकती है, तो वीर सिंह, वीर देव सिंह बघेल काशी का नरेश, वो कबीर परमेश्वर की शक्ति से परिचित था, उनका शिष्य हो चुका था और साधु संत की मर्यादाओं से, परमात्मा की मर्यादाओं से परिचित हो चुका था। बिजली खां पठान मगर नवाब ने 2 सैनिक भेजे सिपाही घोड़े के ऊपर और कहा, एक पत्र लिख दिया वीर देव सिंह बघेल के नाम के, आप मैंने सुना है कि आपके शहर में कोई कबीर नामक संत है और मेरे क्षेत्र में भयंकर अकाल गिर चुका है, आपसे प्रार्थना है कि उस कबीर संत को मेरे यहां भेज देना, भेज दें और इन सैनिकों के साथ वो घोड़े पर बैठकर आ जाए, यहां वर्षा करवानी है। हम इतने अज्ञानी है भक्ति मार्ग से, बताइयो कोई बड़का का खेल था, संत ने बुलावा कौन सी धरण ठुआनी थी। अब वो सैनिक लेकर वो पत्थर चल पड़े जाकर के वीर सिंह बघेला उस राजा को बिजली खां पठान का संदेश दे दिया। उसने पत्र पढ़ा, वीर देव सिंह ने पत्र पढ़ा और तुरंत पत्र लिख दिया और मौखिक भी उन सैनिकों से कहा, उस पत्र में भी लिख दिया और सैनिकों से भी बोल दिया कि भाई बिजली खां पठान से कहना कि ये कोई तरीका नहीं संत को बुलाने का और उसे रहम पाने का, उसमें पत्र में भी लिखा और सैनिकों से बोल दिया कि बिजली खां पठान आवे और संत के चरणों में नतमस्तक हो और प्रसन्न होकर ये उसके साथ चले तो बात बनेगी ना, कोई बड़का खेल नहीं है कि उसने भेज दिया कोई इंजेक्शन थोड़ा लुवाना था वे आते ला देंगे। तो दोनों सैनिक वापस आ गए बहुत शीघ्रता से। जब बिजली खां पठान को संदेशा मिला तुरंत सैनिक लेकर के सैकड़ों की संख्या में अंगरक्षक घोड़ों पर सवार होकर के वो तुरंत चल पड़ा। वीर देव सिंह बघेल नवाब के घर पर पधारा पहुंच गया तो वीर सिंह बघेल ने कहा कि मेरे साथ चल परमात्मा के पास और वहां जाकर उनके चरण छूले पकड़े, प्रसन्न होंगे तो चलेंगे, निसंत के को ऐसे नहीं बोला करते कि यहां भेज दो। तो बिजली खां पठान और वीर सिंह बघेल दोनों राजा वहां पहुंचे, परमात्मा को प्रणाम किया क्योंकि वीर सिंह बघेल कबीर परमेश्वर के शिष्य थे। परमेश्वर ने पूछा कैसे आना हुआ राजन दास की कुटिया पर। वीर सिंह बघेल ने दंडवत प्रणाम करने करके उठकर कहा प्रभु ये बिजली खां पठान मगर के नवाब हैं, आपसे कुछ प्रार्थना करने आए हैं, मेरा ये मित्र है। परमात्मा ने कहा बोल बच्चा क्या आदेश है। बिजली खां पठान ने कहा प्रभु एक अर्ज है मेरी, हमारे क्षेत्र में दुर्भिक्ष गिर गया है, बहुत भयंकर अकाल गिर गया है, तराई तराई मची है प्रभु, आपकी रजा हो जावे तो एक वहां वर्षा हो। पुण्यात्माओं उन ब्राह्मणों ने उन हिंदुओं ने जो वहां मगर में निवास करते थे सब पत्रे पुत्रे देख लिए थे और भविष्य वक्ताओं से भविष्य के जानने वाले भविष्यवाणी करने वालों से भी संपर्क कर लिया था। अब ये जो कुछ संत इस टाइप के होते हैं उनकी समाधि ऊपर धर्मराज के दरबार में पहुंच जाती है, उनकी आत्मा शरीर यहीं रह जाता है वो समाधिस्थ होकर के, और वहां जाकर के वो उस अक्षेत्र का अकाउंट देख लेते हैं कि इस क्षेत्र में वर्षा इस समय में होगी या नहीं, ऐसा कोई प्रारब्ध है या नहीं, ये पूर्व निर्धारित है जहां पर फलडाणी है या कहीं पर ऐसा यानी सूखा गिरना है जो कुछ भी। तो उन्होंने बता दिया था कि यहां इस क्षेत्र के लोगों का पुण्य नहीं है जिसके कारण यहां वर्षा नहीं हो सकती कई वर्ष तक। अब परमात्मा कबीर जी ने स्वीकृति दे दी, चलो भाई मैं चलता हूं। परमात्मा को एक घोड़े पर बैठाया और वहां से चल पड़े। जब रास्ते में आ रहे थे तो वहां एक नाथ जी, वैसे अन्य लोग नहीं जानते थे, परमेश्वर कबीर जी ने पहचाना उसको कि वो गोरखनाथ जी थे। गोरखनाथ जी क्योंकि वहां गोरखपुर का स्थान है जहां पर विशेष साधना गोरखनाथ जी ने की थी, इसलिए गोरखपुर नाम से वो शहर प्रसिद्ध हुआ, उसमें गोरख टीला भी है। अपुण्यात्माओं हम ये सोचते हैं कि ये संत जैसे गोरखनाथ जैसे पार हो गए और इनकी इनकी इतनी सिद्धियां थी कि एक बार गोरखनाथ जी ने अपने गुरु मच्छंदर नाथ के भ्रम को निवारण करने के लिए एक पहाड़, जो पहाड़ था मिट्टी का पत्थर का, उस पूरी पहाड़ी को सोने का बना दिया था अपनी सिद्धि शक्ति से। और गोरखनाथ जी ने अपने गुरुजी मच्छंदर नाथ जी के शरीर को, जो एक राजा की रानी ने उस मच्छंदर नाथ का शरीर कटवा के नष्ट करवा दिया था, जला दिया था, और मत्स्यन्दर नाथ जी उस रानी के राजा के मृत शरीर में प्रवेश करके और वहां रह रहा था। तो गोरखनाथ ने मत्स्यन्दर नाथ जी का की आत्मा को राजा के शरीर से निकाला और जो राख पड़ी थी, अस्थि पड़ी थी मत्स्यन्दर नाथ की जड़े हुए शरीर की, सभा की हुई, उन अस्थियों से अपनी सिद्धि शक्ति से मत्स्यन्दर नाथ का शरीर बना दिया और उसमें प्रवेश कर दिया। इतनी शक्ति थी इस गोरखनाथ में, लेकिन न तो इसका मोक्ष था, ऐसे ब्रह्म माटी नो की नो रही उसका प्रमाण दिया जा रहा है। अब क्या होता है कि जिस गोरखनाथ जी का शरीर छूट गया, मर गया, अब ये सूक्ष्म शरीर में प्रेत वाले शरीर में पितर रूप में घूमते रहते हैं। जैसे हम गोपीचंद और भर्तरी को मुक्त मानते हैं, वो मुक्त नहीं है, ऐसे ही पितर रूप में भटक रहे हैं। जहां जाए कहीं प्रगट हो जाते हैं, दर्शन दे देते हैं किसी को, फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो ये मोक्ष प्राप्त प्राणी के लक्षण नहीं है। मोक्ष प्राप्त प्राणी बहुत कर इस संसार में नहीं आता। तो गोरखनाथ जी के वहां गोरखपुर 25 किलोमीटर था। अब वो उसने सोचा कि यहां दुर्भिक्ष गिर गया और ये किसी संत को बुलाने गए हैं, और वो संत आकर के यदि यहां कोई करिश्मा दिखा देगा तो मेरी महिमा खत्म हो जाएगी। इस दृष्टिकोण से गोरखनाथ जी वहां एक साधु वेश, अपना नाथ परंपरा वाला वेश की वेशभूषा बना करके प्रगट होकर के, यानी एक सिद्धि ऐसी होती है कुछ समय के लिए वो चोला धारण कर सकता है। तो वहां शरीर धारण करके एक छोटी सी तलैया, जैसे खेतों में लेट होती है, लेट बोले हमारे रोहतक जिले में, छोटी सी जोड़ी, छोटी सी तलैया खेतों में होती है। तो उस वो तलैया सूखी पड़ी थी, उस तलैया के ऊपर गार्ड का अपना वो चमटा, ये त्रिशूल, और वहां बैठ गया ऐसे आसन लगा के। जब परमात्मा आ रहे थे और मगर में प्रवेश करने को जा रहे थे, मगर नगर से 1.5 किलोमीटर दूर, ये दास देख कर आया ये घटना, वहां पर आज भी अवशेष बचाया, शेष बाकी हैं, अवशेष बचे हुए हैं, और वहां के लोग, इस वहां के व्यक्ति ये प्रमाण देते हैं कि सचमुच ऐसा हुआ था। जब परमेश्वर कबीर जी ने देखा कि नाथ जी आए हुए हैं, गोरखनाथ बैठा है और इसके मन में के दोष है, वो तंत्रयामी थे, वहीं रुकवा लिया घोड़ा और राजा से कहा कि, नवाब से कहा कि हे राजन बिजली खां पठान, आप इतनी दूर गए काशी में 200-250 किलोमीटर, ये देखो महापुरुष बैठे हैं आपकी बनी में, आपके जंगल में, इनसे अर्ज करो, ये जो चाहे सो कर सकते हैं। अब गोरखनाथ जी सुना और दूना फूल गया, कुप्पा हो गया। तो बिजली खां पठान, हमारे मन में भी एक दोष रहता है, तो क्योंकि कबीर परमात्मा को जब जहां से बिजली खां पठान लाए बैठा के, तो वो उस समय कपड़ा बुने थे, एक गरीब जुलाहा बैठा खड्डी में कपड़ा बुने, तो उसके मन में जचना थी कि यो संत है, भगवान तो बहुत दूर की बात, उसको भगवान माना, तो वो ले जरूर आ रहा था, पर बिजली खां पठान के मन में भी खोट था कि यो संत संत तो ना लगता। तो दोनों की फड़क निकालनी थी, एक तीर में दो शिकार करने चाहे परमात्मा ने, एक तो गोरखनाथ की फड़क निकालनी थी, एक बिजली खां पठान का दिमाग सेंटर में लाना था। तो बिजली खां पठान को जब ये को ये सुना कबीर जी के मुखारविंद से, परमेश्वर के मुखारविंद से, कि देख ये महापुरुष जो चावे सो कर दे, इतने सिद्ध पुरुष हैं, इन नाथ जी महात्मा से आप प्रार्थना करो वर्षा के लिए। गोरखनाथ जी गणाराज जी ना वो बिजली खां पठान गणा प्रसन्न हो गया, अक्सर सचमुच महात्मा ते ईशे होया करे। और जाकर बिजली खां पठान ने प्रार्थना की, हे नाथ जी हे महात्मा जी, हम यहाँ की जनता पानी के लिए तरस रही है, कृपा वर्षा करवा दो। अब नाथ जी खड़ा हुआ, वो त्रिशूल निकाला और उस तलैया के बीच में जाकर जो सुक्की जोड़ी थी छोटी सी लेट, उसके बीच में जाकर त्रिशूल मारर न्यू काट दिया। वहां से पानी की धार फूट आई और वो तलैया, पूरी छोटी सी तलैया थी, वह बरगी पानी की। और फिर नाथ जी आकर बैठ गया नुआ कड़कर। अब कबीर परमात्मा बोले, देखो भाई कर दिया ना पानी, ये पानी कर दिया महात्मा ने, हद तेरे की। देख तुम कहां गए थे, ठीक हो गया काम, बिजली खां बनगी बात है। बिजली खां पठान बोला, प्रभु इस जल से तो एक दिन के पशु भी नहीं छिक सकते, हे नाथ जी वर्षा करवा दो। नाथ जी कहते हैं कि इस अक्षेत्र के पुण्य समाप्त हो चुके हैं, इस अक्षेत्र के लोगों के पुण्य नहीं है, इनके प्रारब्ध में यहां वर्षा नहीं है, और मैंने इंद्र तक के कागजों को टटोल लिया है, इस अक्षेत्र में 2-3 वर्ष तक वर्षा नहीं हो सकती। और कहते हैं वजीर और फकीर दो नहीं आपस में सुहाया करते हैं। अब कबीर परमेश्वर ने कहा कि हे नाथ जी दया कर दो, आप तो जो चाहो सो कर सकते हो, वर्षा करा दो, आपके बच्चे यहां तराई तराई कर रहे हैं। तो गोरखनाथ जी नाराज हो गए, ने बोला तू करवा दे, ऐसा वर्षा करवाने वाला है, इनके भाग्य में नहीं है तो कहां से दे दे, कहां से वर्षा हो जा। अब बिजली खां पठान फंस गया, कहिया तो बात बिगड़ गई भाई, जब इंद्र के कागजात ही देख लिए इसने और महात्मा ने कहा तो वर्षा नहीं होगी तो मर गए भाई अंत। तब बिजली खां पठान को चिंतित देखकर परमेश्वर ने कहा कि आप जाओ सभी यहां से अपने नगर को जाओ, और परमात्मा जहां वो गोरखनाथ जी बैठे थे उससे 200 फुट की दूरी पर वहां बैठ गए। ऐसे लीला करके जैसे ध्यान लगा रहे हैं, कहने लगे भाई तुम जाओ, मैं अर्ज करूंगा भगवान ते, जब सुन ली मेरी तो मैं यहां बैठ जाता हूं। अब बिजली खां पठान ने सोची देख कुछ ना होना भाई, मेरे ख्याल में इस कबीर ने भी पता लग गया कि हमारे बाग में कोई ना, यू खिसकेगा ही भाग जाएगा यहां से। परमात्मा उसके अंतर की बात जानकर ने बोला, बिजली खां जल्दी निकल चले जाओ अपने घर को, कहीं रस्ते में भीग ना जाओ तुम वर्षा से, तू नवाब है। अब ना सोची भाई, चली कह दिया संत ने, चला अपने घर ने। अब वो आधा किलोमीटर गांव से जब रह लिए, इतने जबरदस्त बादल आए न उमड़ के और सारी रात वर्षा हुई न कम से कम 8 घंटे, और बर्दिये सब ताल सब पानी पानी कर दिया परमेश्वर कबीर जी ने। बोलो सतगुरु देव बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। अब सारा गांव उमड़ के उस वर्षा में बरसते में उल्टे आगे वह कितके घर गांव थे, और परमेश्वर के चरणों में बाल बच्चों समेत वहीं आके गिर गए। घर पर चलो परवरदिगार हमारे, गांव चलो परवरदिगार। परमात्मा बोले ये तुम्हारे भाग्य में नहीं था, ये इस दास की अर्ज सुनी है मेरे पूर्ण परमात्मा ने, यानी खुद ही डबल रोल कर रहे थे। परमात्मा बोले कि मैं तुम्हारे नगर में चलूंगा इस शर्त पर, इस कंडीशन पर कि तुम हिंदू और मुसलमान मेरा उपदेश लोगे, मेरे शिष्य बनोगे। परमात्मा ने कहा यह तो एक आपत्ति थी, ऐसी ऐसी ना जाने कितनी आपत्ति तुम्हारे अंदर आएंगी, उनको भी दूर करूंगा। अब इतनी समर्थता देख के पूरे नतमस्तक हो गए, प्रभु जैसे आप कहोगे वैसे ही कर लेंगे। तब परमात्मा कबीर जी ने उनके नगर में प्रवेश किया, हिंदू और मुसलमानों को दोनों को संदेश दिया। हिंदू और मुसलमान दोनों ने परमात्मा की शरण ग्रहण की, बिजली खां पठान भी उनका शिष्य बन गया। अपुण्यात्माओं, इन अज्ञानी संतों ने, गुरुओं ने, नकली ब्राह्मणों ने एक धारणा फैला रखी थी कि जो मगर मरता है वो गधा बनता है, नरक जाता है, क्योंकि इस धरती को भगवान शंकर ने साप दे रखा है और वहां एक नदी बह रही थी आमी नदी, उसको भी शंकर भगवान ने श्राप दे रखा था, उसको सुखा दिया था, उसमें पानी कभी नहीं आओगा, ये श्राप था। ये श्राप जो होते हैं ये तीन ताप में आते हैं और इन तीन तापों का निवारण भी कबीर परमेश्वर ही कर सकता है, ना ब्रह्मा कर सकता, ना विष्णु कर सकता, ना शिव जी कर सकता। जैसे विष्णु जी को श्राप दिया था नारद ने, तूने मेरे एक साथ धोखा किया है तो तू भी अपनी पत्नी के वियोग में पृथ्वी पर धक्के खाओगा, अपनी पत्नी के वियोग में तू भटकता फिरेगा और मेरे जैसे मुंह आड़े तेरी मदद करेंगे बंदर। तो नारद के श्राप को, उस तीन ताप को विष्णु नहीं काट सका, उसको भोगना पड़ा। रामचंद्र रूप में जन्म हुआ, राजा दशरथ के घर जन्म हुआ, सीता जी का अपहरण हुआ और पूरा जीवन दुख ही दुख में। फिर रावण को मार के सीता को वापस लाए, आते सीता ने गर्ते निकाल दी, अंतिम सांस तक अपनी पत्नी के वियोग में मर गया, रामचंद्र जी का अंत हुआ। तो विष्णु जी भी अपने तीन ताप को नहीं काट सके, तो औरों के काटेंगे। तो परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी ने कहा कि तुम कौन राम का जप तेजापम और ताते कटे ना तुम्हारे तीनों तापम। अब तीन ताप जैसे किसी का पितर रुष गया, किसी का भूत आकड़ गया, किसी का कुछ और आपत्ति आ रही है, ये तीन ताप के अंतर कोई देव तारूस रहा है, इन तीन तापों की आपत्ति को भी कबीर परमेश्वर ही दूर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। उधर से काशी के नकली ब्राह्मण ने क्या कर रखा था, एक अफवाह फैला दी कि जो काशी मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाओगा। अब हिंदू बोले वाले श्रद्धालु हिंदुओं ने क्या सोचा कि भाई पिता माता पिता की मृत्यु तो होनी है, क्यों ना इनको बनारस में कोई स्थान किराए पर लेकर अंतिम समय में वहां रखते हैं। विशेषकर जो अधिक पैसे वाले थे उनमें ये प्रेरणा हुई, तो उन्होंने अपने गुरुओं से प्रार्थना की कि गुरुदेव हम अपने पिता माता को, ये वृद्ध हो चुके हैं, इनको यहाँ किराए का मकान लेकर के यहाँ व्यवस्था कर देते हैं इनके खाने और पीने की, और ये अंत समय में यहाँ मर जाएंगे, इनका मोक्ष हो जाएगा काशी में मरणते। अब उन नकली गुरुओं, वो तो स्वार्थी लोग थे, वो ब्राह्मण स्वार्थी थे, उन्होंने मीटिंग की कि भाई बहुत से लोग यहाँ अपने माता पिता को छोड़ने लगे मोक्ष के लिए, क्यों ना हम इनको अपने घर पर रख लें, अपने अपने यजमानों को। तो उन्होंने ऐसी स्कीम बनाई, उन वृद्धों के बच्चों से कहा कि बेटा बात सुनो, आपके माता पिता को हम अपने घर पर रख लेंगे, तुम्हारा किराया बच जाएगा, हम यहां रख लेंगे। तो ये पता था कि वो श्रद्धालु माता पिता का खर्चा तो देवेंगे, अगर 5 रुपए का खर्चा होना था तो 10 रुपए बता दिया भाई 10 रुपए खर्च होंगे। तो उन श्रद्धालुओं ने 10 रुपये 7 महीने के या 2 महीने देश के, उसमें ऐसा एक जो ना महंगाई नहीं थी, ऐसा हो गया। तो क्या हुआ कि उन नकली ब्राह्मणों के घर पर भीड़ होगी, तो एक के घर में 20-20 बुढ़े और बुढ़िया, कोई तो थुक है, कोई खांसा है, किसी के दस्त लग रहे हैं, ब्रनमैटी होगी। अब उन्हें सोची ये बुढ़ा माता पिता बुजुर्ग हो जाए तो एक दो संगवाना भारी हो जाता है, और उन या आपत मोल ले ली, 20-25 बुढ़े घर में रख लिए लालच में। अब उन दुष्टों ने के स्कीम बनाया, उनकी मीटिंग हुई, वही नू तो पारना पड़े, ये बुढ़े के इतने दिन रखे जा। फिर एक और अफवाह फैला दी, एक अत्था ला दिया जिद से कसाई लाया करे बकरे काटने का, ऐसा हत्था गंगा के किनारे ला दिया और उसने अफवाह फैला दी कि वे भगवान की तरफ से क्रोत आवे है, जो लकड़ी काटने का लंबा सा होता दोनों तरफ पकड़कर उसने नो काट नो खेचा कर नो उस तरह लकड़ काटते हैं, ऊपर से क्रोत आवे भगवान की तरफ से, जिन्होंने शीघ्र स्वर्ग जाना है तो वह 10 रुपए की टिकट या 5 रुपए की टिकट लगा दी कि शीघ्र स्वर्ग जाना है तो 10 रुपए टिकट। अब उन बुढ़िया ने सोची वह मरना तो से, देखो परमात्मा के लिए हमने अपना शरीर भी सौंप दिया लेकिन यथार्थ विधि ना होने से दुर्गति ही रही। अब उन बुढ़िया ने के किया कि अपने बच्चों से कहा बेटा हमने मरना तो है और यहां भी उद्देश्य आने का हमारा है कि स्वर्ग जावा, और शीघ्र स्वर्ग जाने के लिए गुरु जी बतावे हैं भगवान की तरफ से क्रोत आवे है और उस क्रोत कहते गर्दन काट देता है, तुरंत पता भी ना लगता, एक सेकंड में दर्द भी ना होता और स्वर्ग चले जाते हैं। इनकी 10 रुपए फीस है बेटा, 10 रुपए महीना हम आप यहां दे रहे हो और 10 उन्होंने 50 रख दिए होंगे, मतलब एक कोई ऐसा स्कीम बनाई थी। तो उन माता पिता के कहने से, वैसे तो बच्चे नहीं अलाउड करते अपने माँ बाप को मरवाना, लेकिन माता पिता की प्रार्थना पर स्वर्ग जाने की इच्छा से तो वो उन्होंने वो फीस देनी शुरू करती अपने माँ बाप कटवाने के लिए, उन गुरु नकली झूठे इन कपटी गुरुओं की बात में विश्वास करके। तो वो क्रोत ला दिया वहां, वो भी कटवाना स्वीकार कर लिया, हमने ऐसा जुल्म किया इन लोगों ने। तो परमात्मा कहा करते थे कि भाई सत भक्ति शास्त्र अनुकूल साधक पूरे संत से भक्ति भजन ले मंत्र लेकर के, चाहे वो मगर मरे और चाहे काशी मरे, वो अपने जिस इष्ट की पूजा करता है उसके लोक को जाएगा। ये झूठ बोल रहे हैं नकली ब्राह्मण, ये झूठे कपटी स्वार्थी, इन्होंने जो कसाईवाड़ा कर रखा भाई, इनकी बातों को मत मानो। लेकिन हम इतने बोड़े थे शुरू से, हम इन नक झूठे गुरुओं की बात को सच्ची मानते थे और परमात्मा की बात को नकार दिया। उस भ्रम को निवारण करने के लिए परमात्मा ने कहा कि मैं मगर में शरीर छोड़ूंगा और पंडितों आ जाइयो देख लियो अपने पत्रे लेकर मैं कहां जाऊंगा, नरक जाऊंगा या गधा बनूंगा या नरक स्वर्ग से भी आगे जाऊंगा, मैं सतलोक जाऊंगा वहां से मगर में मर के। वो दिन निश्चित कर दिया, वहां से पैदल चल पड़े परमात्मा, 3 दिन में पहुंचे और साथ में काशी का नरेश वीरदेव सिंह बघेल, अपनी सेना लेकर साथ चल पड़ा कि अपने गुरुदेव का शरीर में यहां लाऊंगा काशी में और हिंदू रीति से अंतिम संस्कार करूंगा, यदि बिजली खां पठान राजी खुशी नहीं देगा तो उसके साथ युद्ध करके जबरदस्ती छीन के लाऊंगा, सेना ले चला। उधर दूसरी तरफ बिजली खां पठान को पता चला कि गुरुदेव यहां आ रहे हैं हमारे पीर और शरीर छोड़ेंगे, तो बिजली खां पठान ने अपने मुसलमानों से विचार विमर्श किया मंत्रियों से कि अभी अपने गुरु अपने पीर का शरीर हम नहीं देंगे, हम अपनी मुसलमान रीति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे और इन मुसलमान हिंदुओं को नहीं देंगे, ये इनको जलाएंगे जो हमारी विधि के विरुद्ध है। उन भी ठान ली के यदि कोई बिजली वीर सिंह बघेला आएगा यहां से हिंदू लेना चाहेंगे शरीर को हम नहीं देंगे, चाहे हमने युद्ध करना पड़े। तो दोनों तरफ से सेना तैयार होगी,